الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کے معنی ہیں طریقہ. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سنت کہلاتا. اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکامات اسلام قرآن میں نازل فرما دیے، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن میں اجمال ہے، احادیث میں تفصیل ہے. قرآن نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کس طرح قائم کریں، ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، کہاں پر باندھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، قیام کیسے کریں، یہ نہیں بتایا. زکوٰۃ کا حکم دے دیا، بتایا نہیں. روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا تمام احکامات نازل فرما دیے. اب اگر نماز پڑھنی ہے تو میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ. اور سرکار نے فرما دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو، جیسے میں کرتا ہوں ایسے تم کرتے رہو. اور ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نظریہ اور ایک چیز ہوتے ہیں نمونہ، ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل. تھیوری آپ کو بتا دی گئی، اس طرح آپ کو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں بتا دی گئی، لیکن اگر پریکٹیکل کر کے بتا دیا جائے تو آدمی جلدی اس کو سمجھ لیتا. مثال کے طور پہ ایک یہ میز ہے، آپ ایک کارپینٹر کو بلائیں اور اس کو بتائیں کہ مجھے ایک میز چاہیے، اس کی چار ٹانگیں ہوں گی، اس کا اوپر ایسا ہے، نیچے ایسا ہے، ساری چیزیں بتا دی، وہ بنا دے گا. لیکن اگر ایک نمونہ اس کے سامنے پیش کر دیں گے، جیسی یہ میز رکھی ہے ایسی مجھے چاہیے، تب کتنی آسانی ہے اس کے لیے. اس نے دیکھا ویسا ہی بنا دیا، دیکھا ویسا ہی بنا دیا. تو خالق کائنات اگر چاہتا تو قرآن کو بیت اللہ پر نازل کر دیتا، اے میرے بندوں یہ قرآن نازل ہو گئے، اس کو اٹھاؤ اور پڑھ لو، عمل کر لو. لیکن نہیں، قرآن سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا. اے محبوب، جو کچھ قرآن کہتا رہے آپ عملی نمونہ پیش کرتے رہیے. ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن. خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت مآب. تو ایک خاموش قرآن، ایک بولتا قرآن، دونوں قرآن ہمارے سامنے کر دیے. قرآن نے کہا نماز پڑھو، رسول نے نماز پڑھ کے بتا دی. ہمیں کیا پتا ہم کیسے کھڑے ہوں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں. فرمایا مجھے دیکھتے رہو اور کرتے رہو، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے، ایک ہے فرض اور ایک ہے سنت. فرض وہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو وہ عمل ہوتا ہی نہیں. جس چیز میں فرائض ہوں، مثلا غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، اگر فرض آپ سے ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، تو وہ چیز مکمل نہیں ہوگی. اب سب سے پہلے آپ لیں وضو کو. وضو کے بغیر نماز نامکمل ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. وضو کے بغیر نماز نہیں نا. اب کیا ہے، قرآن نے ہمیں وضو کا حکم دے دیا. اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنتیں ہیں، جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو وہ عمل جو ہے اور نکھر جاتا ہے. سنت نے اعمال کو نکھارا ہے. सुन्नत ने आमाल को सवारा है और सुन्नत ही इन आमाल की जीनत है। अगर सुन्नत को हटा दिया जाए तो इन आमाल की जीनत खत्म हो जाए। अब उसमें एक मिसाल के तौर पे वुजू को आप लीजिए, वुजू में कितने फर्ज हैं? चार। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ए ईमान वालों जब नमाज का इरादा करो अपने चेहरों को धो लो, वा अय्दियकुम इलल मराफिक और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, ठीक है, वमसहू बिरूसिकुम और अपने सरों का मसा कर लो, वा अर्जुलकुम इलल काबैन और अपने पैरों को टखनों समेत धो लो। कितने फर्ज हो गए? चेहरे का धोना, हाथों का कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना और पैरों का टखनों समेत धोना, ये चार फर्ज हैं वुजू। अब इन चार में से एक भी तर्क हो जाए तो वुजू नहीं होगा, ये चारों लाजमी हैं। अच्छा, कुरान ने तो हुक्म दे दिया चेहरे को धो लो, लेकिन कितना धोएं, इसकी मिकदार क्या है ये नहीं बताया। पूछना है तो मेरे रसूल की बारगाह में जाओ, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये चेहरा धोना, समझ गए? अब ये हमें पता चल गया। लेकिन कुरान ने तो सिर्फ ये कहा चेहरा धो लो, हाथों को कोनियों समेत, सर का मसा और चौथा पैरों को टखनों समेत धो। ये तो है फर्ज। अब सुन्नत क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, सुन्नत तरीका जो है हाथ धोए ना, उसके बाद अरे वुजू किया है या नहीं किया, करते भी हैं या बगैर वुजू टरखा देते, करते हैं ना, तो कुल्ली करते हैं, उसके बाद नाक में पानी, फिर चेहरे पर, ठीक है ना। तो अब कुरान ने तो नहीं कहा हाथ धो या कुल्ली करो या नाक में पानी डालो, क्यों डाल रहे हैं? कुरान ने तो नहीं कहा ना, उस कुरान ने तो साफ कहा फ़ग़सिलु वुजूहकुम, चेहरों को धो लो, वाइदियकुम इलल मराफिक हाथों को कोनियों समेत, वमसहु बिरूसिकुम सर का मसा, वअर्जुलकुम इलल काबैन। तो कुरान ने तो कहा नहीं कुल्ली करो, कुरान ने तो कहा नहीं नाक में पानी डालो, कुरान ने नहीं कहा, लेकिन साहिब कुरान का अमल यही, सरकारे दो आलम अलैहि सलातो व सलाम का अमल यही, सुन्नत तरीका यही है, पहले हाथों को धोएंगे उसके बाद कुल्ली करेंगे फिर नाक में पानी डालेंगे। अब देखो सुन्नत की हिकमत देखिए, सुन्नत की हिकमत, और सुन्नत ने इबादत को निखारा है, सुन्नत ने इबादत को सवारा है और सुन्नत इबादत की जीनत है। अब हमें यह पता चल गया कि पानी से वुजू करना है, यह तो पता चल गया ना, चेहरे को धोना है, हाथों को धोना है, सर का मसा करना है, पैरों को टखनों समेत धोना है, लेकिन पानी कैसा हो, पानी कैसा हो जिससे वुजू करें? वुजू करने के लिए पानी में तीन औसाफ का होना जरूरी है। कितने औसाफ? तीन औसाफ। बेरंग हो, बेजायका हो और बगैर बू के हो। खुशबू या बदबू, किसी किस्म की बू नहीं होनी चाहिए, तीन औसाफ होना जरूरी है। लेकिन अब ये औसाफ पता कैसे चले? हमने तो पानी लिया, जल्दी से चेहरे पर डाला, हाथों को धोया, सर का मसा किया, पैर धो ली, पता कैसे चले कि पानी बेजायका है, बेरंग है, बेबू है, इसमें किसी किस्म की बू नहीं, खुशबू या बदबू कुछ नहीं? सुन्नत हमें बताएगी, सरकार की सुन्नत ने बता दिया, फरमाया पहले अपने हाथों को धो लो, जब हाथों को धोया तो रंग पता चल गया, पता चल गया ना, अब जब कुल्ली की तो जायका पता चल गया, और नाक में पानी डाला तो खुशबू या बदबू का पता चल गया। यह है सरकार की सुन्नत। सुन्नत ने निखारा या नहीं निखारा? सुन्नत ने सवारा या नहीं सवारा? सुन्नत को निकाल दो, इबादत की जीनत ही खत्म हो जाए। इसलिए मेरे रसूल की सुन्नत जरूरी है। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती वसुन्नतिल खुलफाई राशिदीन अल महदीयीन, लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को। لازم پکڑ لو، تم پر واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر سنت ہٹا دے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے ذائقہ کیا ہے، منہ میں تو لیا نہیں، چہرے پہ ڈال لیا، ہاتھ دھوئے رنگ پتہ چل گیا، سرکار کی سنت ادا کی کلی کی 3 مرتبہ، ذائقہ پتہ چل گیا، اگر بد ذائقہ ہے تو وہیں چھوڑ دیا، یہ تو کڑوا ہے، یہ تو منہ میں نہیں لی جا سکتا، اور اگر رنگ دیکھ لیا اس کا تو رنگ ہے، وضو صحیح نہیں ہے، اور ناک میں پانی ڈالا بدبو آئی فوراً چھوڑ دیا، اس سے نہیں، اس سے وضو جائز نہیں۔ سنت نے عبادت کو نکھارا یا نہیں نکھارا؟ یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کی، کہ آپ نے ایک سنت پر عمل کر لیا، عبادت میں نکھار پیدا ہو گیا، عبادت میں نکھار پیدا ہو گیا۔ اچھا پھر ایک سنت اور ہے، ہر اعضا کو 3 مرتبہ دھونا سنت، وضو میں 3 مرتبہ دھونا سنت۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو میں 1 مرتبہ دھویا، یعنی ہر اعضا کو، جتنے اعضا ہیں 1 مرتبہ دھویا، یہ تو فرض ہے، ظاہر ہے 1 مرتبہ نہیں دھوئے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ فرمایا جس نے 2 مرتبہ دھویا اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور جس نے 3 مرتبہ ہر اعضا کو دھویا، یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ تو ہر اعضا کو 3 مرتبہ دھونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور اس میں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، سنت پر عمل کرنے سے عمل کامل ہو جاتا ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے جلدی میں دھو لیا، ہو سکتا ہے کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو، ممکن ہے نا، جلدی میں دھو لیا، ہاتھ نہیں پہنچا، خشک رہ گئی، 2 مرتبہ دھویا تو یقیناً ہو جائے گی، اور 3 مرتبہ میں تو امکان ہی نہیں کہ 3 مرتبہ آپ دھو رہے ہوں اور پھر کوئی عضو خشک رہ جائے، گویا 3 مرتبہ دھویا، سرکار کی سنت پر عمل ہو گیا، وضو کامل ہو گیا، گویا سنت ہمارے اعمال کو کامل کرتی ہے، سنت ہمارے اعمال میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور سنت ہی عبادت کی زینت ہے۔ اس لیے ہر عمل میں ہمیں دیکھنا چاہیے سرکار کی سنت کیا ہے، جتنی سنت پر عمل کرو گے سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جس عمل میں سنت پر عمل کر رہے ہیں وہ عبادت کی زینت بھی بن جائے گا، وہ کامل بھی ہو جائے گا، اکمل بھی ہو جائے گا، یہ ہے۔ پھر وضو کی فضیلت دیکھی، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کامل وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف چلا، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہو رہا اور ایک برائی مٹتی جا رہی، ہر قدم پر، اور اگر کوئی دور سے جا رہا ہے تو اندازہ کرو کتنے درجے بلند ہو گئے، کتنی برائیاں مٹ گئیں، اور اگر 5 وقت جا رہا ہے تب کتنے درجے بلند ہو گئے، تب کتنی برائیاں مٹ گئیں۔ یہ ہے سنت پر عمل کرنے کی فضیلت، اجر اور ثواب۔ پھر وضو انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا، یہ بھی حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا بندہ مومن وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، اس نے چہرے پر پانی ڈالا، چہرے کے گناہ جھڑ گئے، پیروں کو دھویا، پیروں کے گناہ جھڑ گئے، پورا کامل وضو کر لیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، نماز کے لیے تیار ہو، یہ ہے وضو کی فضیلت۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین مشائخ طریقت نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو ہمیشہ باوضو رہو، جیسے آپ رفع حاجت سے فارغ ہوں فوراً وضو کر لیں، تاکہ اگر کچھ پڑھنا ہے تو پڑھ بھی لیا، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز بھی پڑھ لی، اور ویسے بھی 24 گھنٹے وضو میں رہیں گے، آپ کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے، فرشتے آپ کے دوست ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، یہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ جو آدمی پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، फरिश्ते उसके दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हमेशा बावजू रहते थे, जैसे ही फारिग हुए फौरन वजू कर लिया। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हमेशा बावजू रहने की कोशिश करें, ताकि आपको कुछ वजाइफ पढ़ने हैं, जो कुछ पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। और अगर कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी नहीं है, आपका वजू पहले से है, आप कर नमाज पढ़ लीजिए। और अगर वजू की जरूरत है ताजा वजू करें तो ताजा वजू कर। ये फायदा है सुन्नत पर अमल करने का और हमेशा बावजू रहने का, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। तो अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जितनी सुन्नतें हैं आप एक एक सुन्नत को लेते जाइए, उसमें हिकमतें मसलहतें मौजूद हैं। हर सुन्नत पर में हिकमत और मसलहत मौजूद। सरकार तशरीफ फरमा है, एक आदमी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया 10 नेकियां। दूसरा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार ने फरमाया 20 नेकियां। तीसरा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सरकार ने फरमाया 30 नेकियां। क्या मतलब, बात समझ गए? सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कह दिया तो कितनी नेकियां? 10। और व रहमतुल्लाह तो 20, और वबरकातुहू 30। बैठे बिठाए 30 नेकियां मिल गई। सलाम को रिवाज दो, एक दूसरे को सलाम करते रहो, एक दूसरे पर सलामती भेजते रहो, 30 नेकियां तो कहीं नहीं गई। और दिन में जितनी मर्तबा सलाम किया और पूरा सलाम कर लिया तो अब हिसाब कर लो कितनी नेकियां नामा अमल में आ गई। फिर सरकार की सुन्नत, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब किसी के घर जाओ दरवाजे पर दस्तक दो तो अंदर से आवाज आती है कौन, ये आवाज आती है ना, दरवाजे पे दस्तक दे बैल दे आवाज आएगी कौन, तो कहते हैं मैं। क्या होती, एक बुजुर्ग का वाकया जहन में आता है, अपने घर में तशरीफ फरमा थे, एक खादिम आया, मुरीद आया मिलने के लिए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा कौन, कहा मैं, कहा अभी इसकी मैं खत्म नहीं हुई भाग जा, पहले अपनी मैं को खत्म करके आ तब आए मेरे पास। मैं क्या होती, जब तक मैं तेरे अंदर मौजूद है कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। बकरी ने कहा ना मैं, तो क्या होता है, छुरी फिर जाती, मैं करती है ना, छुरी फिर जाती, मैं का नतीजा ही यही होता है कि आखिर में छुरी फिर जाती। इसीलिए बुजुर्गाने दीन कहते हैं अपनी मैं पर छुरी फेर दो, अपनी मैं को खत्म कर दो, अपने आप को मिटा दो, तब उसकी बारगाह में पहुंचोगे तब कुछ मिलेगा। तो सरकार ने फरमाया जब जाओ और कोई पूछे कौन, अपना नाम बताओ, मैं नहीं करूं, नाम बताओ। उसको पता है मैं का क्या मतलब, मैं, आप कहते मैं, उसको क्या पता कौन मैं, वो नहीं जानता ना। इसी जमन में एक वाकया जहन में आता, शायद मैंने पहले भी आपको सुनाया हो, हदीस शरीफ में आया नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अच्छा, सरकार की एक सुन्नत और है, जब आप जाएं दरवाजे पर दस्तक दें 3 मर्तबा, जवाब ना आए वापिस आ जाए, यहां तो दरवाजा तोड़ के ही रख दें कि हम आए तो ये खोल क्यों नहीं रहा, ये कैफियत है ना, बैल बजा के उसके दिमाग खराब करते हैं, हम आए हैं भाई, अपने आप को समझते हैं ना। हुजूर ने फरमाया 3 मर्तबा। अब सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, दस्तक दी दरवाजे पर, फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सहाबी मौजूद अंदर, सुना आवाज को अपने कानों से सुना, दरवाजा नहीं खोला। अब देखो अजीब बात है ना, सरकार की आवाज को सुन रहे और दिल में जवाब भी दे रहे हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दरवाजा नहीं खोल। हुजूर ने इंतजार किया, फिर थोड़ी देर बाद दस्तक दी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्होंने जवाब दिया, बल्कि जिस्म के रुए रुए ने जवाब दिया हो, भाई आका सलाम कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खोल। अब तीसरी मर्तबा फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दस्तक दिया, फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फौरन आई, इन्होंने दरवाजा खोल दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकार तशरीफ लाई, इनको पता था ना आप नहीं खोला तो हुजूर वापस चले जाएंगे, ऐसे तो नहीं कि बार बार दस्तक देते रहेंगे। हुजूर ने फरमाया 3 मरतबा, तो सरकार तो पहले खुद अमल करते फिर आगे हुक्म देते। अब देखो दरवाजा ना खोलने की वजह क्या थी। हुजूर के आशिक भी बड़े अजीब अजीब, उनके अंदाज इश्क और मोहब्बत के भी निराले, वो आका भी निराला, उनके मानने वाले भी निराले, वो भी बेमिसाल, मानने वाले भी बेमिसाल, मोहब्बत करने के अंदाज भी अजीब अजीब हैं। अब सरकार ने पूछा जब पहली मर्तबा मैंने दस्तक दी और तुम्हें सलाम किया, दरवाजा क्यों नहीं खोला? तुमने सुना होगा, हाँ या रसूलल्लाह सुना था, जवाब भी दिया था, दरवाजा नहीं खोला। नहीं, क्यों? इसलिए कि मैं ये सोच रहा था आपकी जबान मुबारक से 3 मरतबा हमारे घर वालों पर सलाम हो जाए। मोहब्बत का अंदाज देखो, मुझे पता था कि आप 3 मरतबा जरूर सलाम करेंगे और दरवाजे पर दस्तक देंगे, तो मैंने ये सोचा कि आज तो आका तशरीफ लाएं, जबान रिसालत से हम घर वालों पर 3 मरतबा सलामती हो जाए तो हमारे लिए तो सलामती सलामती। इसलिए मैंने पहली मर्तबा दरवाजा नहीं खोला, अगर पहली मर्तबा खोल देता तो आपका सलाम हम पर एक ही मर्तबा होता। अब 3 मर्तबा जमाने रिसालत से फरमा दिया सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अब तो हमारे लिए सलामती सलामती, रहमत ही रहमत। यह है साहबा का अंदाज, मोहब्बत का अंदाज, इश्क का अंदाज। देखो किस तरह वो हुजूर से मोहब्बत करते थे, वो आका भी बेमिसाल था, मोहब्बत करने वाले भी बेमिसाल। एक साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाइए, उनकी बिनाई जाइल हो गई, यानी मस्जिद नबवी में जाने से कासिर हो गए, कोई आदमी पकड़ कर ले जाए, पकड़ कर ले आए। जाहिर जिस आदमी की बिनाई बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए या बिल्कुल जाइल हो जाए तो खुद तो नहीं चल सकता ना, कोई आदमी चाहिए जो उसको मस्जिद तक लेकर जाए, फिर मस्जिद से घर लेकर आए। अब इन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं आ नहीं सकता, आप मेरे घर तशरीफ ले आइए, एक जगह नमाज पढ़ दीजिए, फिर मैं उसी जगह हमेशा नमाज पढ़ूंगा। सरकार दो आलम अलैहि सलातो व सलाम तशरीफ ले गए, हुजूर की भी मोहब्बत देखिए, अपने उम्मतियों पर, अपने सहाबा पर शफकत देखिए। किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इसका दिल ना टूटे, ये मुझे बुला रहा है कि मैं इस जगह नमाज पढ़ लूं। हुजूर फरमा देते भाई तुम पढ़ लो, घर में कोई नमाज की जगह बना लो, वहां पढ़ लो। नहीं सरकार, आप तशरीफ लाएंगे, उस मकाम पर आप नमाज पढ़ेंगे, फिर मैं उसी को मस्जिद बना लूंगा, यानी मैं हमेशा उसी जगह नमाज पढ़ूंगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, रहमत फरमाई, मेहरबानी फरमाई, खुद तशरीफ ले गए उनके घर। अब फरमाते हैं कहां पढ़नी है? सरकार इस जगह पढ़नी, उस जगह को पहले से साफ करके रखा हुआ, पहले से मुसल्ला बिछा के रखा हुआ है। सरकार ने खड़े होकर नियत बांध ली, अब उस जगह नमाज पढ़ी या नफिल पढ़े, जो भी हुजूर ने पढ़ा, हो गया, हाँ या रसूलल्लाह हो गया, अब मैं हमेशा इसी जगह नमाज पढ़ूंगा, इसलिए कि आपके कदम मुबारक इस जगह लग गए। ये साहबा की मोहब्बत। मस्जिद में नहीं आ सकते, माजूर हो गए तो सरकार को घर में बुला लिया और उस जगह अर्ज कर दिया नमाज पढ़ने, और फिर हमेशा उसी जगह नमाज पढ़ते रहे, इसलिए कि यहां मेरे आका के मुकद्दस कदम लगे। ये साहबा की मोहब्बत। वरना कहते तो हुजूर हम आ नहीं सकते, फरमाते चाहो घर में पढ़ लो, तुम्हारे साथ एक मजबूरी है, बिनाई जाइल हो गई, आ नहीं सकते, एक आरजा है, पढ़ लो घर में। नहीं, मैं उस जगह पढ़ूंगा जहां आका के कदम लगे। ये साहबा की मोहब्बत। तो अर्ज ये कर रहा था कि जितनी भी सुन्नतें हैं, आप एक एक सुन्नत पर गौर करते जाइए, उसमें बेशुमार हिकमतें मिलेंगी, बेशुमार ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमारे जहन में भी नहीं। वुजू की सुन्नत मैंने आपको बता दी कि आपने हाथ धोए तो रंग पता चल गया, कुल्ली की तो जायका पता चल गया, नाक में पानी डाला तो खुशबू या बदबू का पता चल गया, और अगर बगैर सुन्नत के वुजू करें तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। मालूम हुआ कि सुन्नत ने आमाल को निखारा है, और सुन्नत ने आमाल को सवारा है। सुन्नत ही इबादत की जीनत है। अगर ये सुन्नत हटा दी जाए तो इबादत की जीनत ही खत्म हो जाए। इसीलिए सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन अपने हर अमल में सुन्नत को मुकद्दम रखते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह अमल किया, अरे उनके तो कुर्बान जाइए, उनकी तो कैफियत ये थी कि दीगर आमाल की तो बात अलग है, नमाज रोजा हज जकात सदकात खैरात इनकी बात तो अलग है। एक आम बात मैं आपको बता रहा हूं, एक सहाबी हदीस रिवायत कर रहे हैं, हदीस रिवायत कर रहे हैं यानी सुना रहे हैं कि मैंने हुजूर से यह सुना है, और सुनाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि उसमें मुस्कुराने की कोई वजह नहीं थी, हदीस सुनाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो सुनने वाले ने पूछा कि इसमें मुस्कुराने की क्या वजह है, ये जो बात आप बता रहे हैं हुजूर की हदीस सुना रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मुस्कुराने की क्या वजह है? अब सुनो आशिक रसूल का जवाब। कहा मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, मुझे नहीं पता क्या वजह है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं जब ये हदीस मैंने सरकार से सुनी थी हुजूर भी मुस्कुरा रहे थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे, मुझे नहीं पता क्या वजह है, सिर्फ मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा, मैं भी मुस्कुराता। वो तो इस तरह अपने हर अमल में सरकार की सुन्नत को मुकद्दम रखते, हर अमल में, यानी ये नमाज रोजा तो अलग है, जो भी काम करते सरकार ने किस तरह किया, खाना किस तरह खाया है, सोने के लिए कैसे लेटे हैं, रास्ते में कैसे चलते थे, कदम कैसे उठाते थे। सहाबा कहते हैं हम देखते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह चलते थे जैसे कि बुलंदी से पस्ती की तरफ आ रहे हो। कोई आदमी बुलंदी से नीचे की तरफ आता है ना तो अपने आप को रोकता है, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता है, तेजी में नहीं आता ना। अगर बुलंदी से पस्ती की तरफ आए, तेजी में आए तो गिर जाएगा। और अक्सर तो ऐसा होता है कि आदमी खुद ही दौड़ने लगता है अगर ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है, कोई पहाड़ी है कोई चढ़ाई से, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते तो मेहनत लगती है। ऐसे एक पहाड़ सा है, आप उस पर चढ़ रहे हैं तो बड़ी मेहनत कोशिश करके, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अपने आप को रोकेंगे, कदम आहिस्ता आहिस्ता जमा जमा कर रखेंगे। सहाबा कहते सरकार के चलने का अंदाज यही था, इस तरह चलते थे कि जैसा कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, जैसा कि बुलंदी से पस्ती की तरफ आ रहे हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और सहाबा की मोहब्बत का अंदाजा आप क्या कर सकते हैं। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने, हुजूर के चचा, किसी ने पूछा आप बड़े हैं या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैं? उमर पूछी, उम्र में कितना फर्क है? अब चचा और भतीजे की उम्र में तो फर्क होगा ना, होगा या नहीं होगा? चचा पहले या भतीजा, फर्क तो होगा ना। सवाल करने वाले ने पूछा आपकी उम्र में और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र में कितना फर्क है, आप हुजूर से कितने बड़े हैं? अब ये देखो, सवाल देखो और फिर आशिक रसूल का जवाब सुनो, उनकी मोहब्बत देखो, उनका अदब देखो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितने बड़े हैं? उन्होंने जवाब दिया जो सुनने और याद रखने के काबिल है। जवाब यह दिया, कहा बड़े तो वही हैं, बड़े तो वही हैं, पैदा मैं पहले हो गया था। गौर करो, यह भी गवारा ना किया कि मैं ये कह दूं कि उम्र में मैं इनसे बड़ा हूं। कहा बड़े तो वही हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, बड़े वही हैं, हां पैदा मैं पहले हो गया। यह है उनकी मोहब्बत, ये भी गवारा नहीं करते कि मैं ये कह दूं कि उम्र में मैं बड़ा हूं, नहीं, बड़े वही। और यही हकीकत है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़े वही, सारी अजमतें उन्हीं के लिए हैं, सारी रिफातें उन्हीं के लिए हैं, सारी बुलंदियां उन्हीं के लिए हैं। अब जिसको अजमत और बुलंदी चाहिए वो सरकार के कदमों में है। अल्लाह ने अपने बाद अगर किसी को सबसे बरतर और बाला बनाया, सबसे अफजल और आला बनाया, जाते पाके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए वो खुद आला हैं, उनकी सुन्नतें भी आला हैं, उनके खुलफा भी आला हैं, उनके सहाबा भी सबसे आला। फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, मेरा जमाना तमाम जमानों से बेहतर है। जिस जमाने में हुजूर हैं तमाम जमानों से बेहतर, حضور کے صحابہ دیگر انبیاء کے صحابہ سے بہتر، جو قرآن نازل ہوا وہ کتب سماویہ سے بہتر، جتنی چیزوں کا تعلق رسول کی ذات سے وہ سب سے بہتر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں ہم ان میں اگر ذرا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی سنتوں میں کتنا فائدہ ہے، کتنی حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں، بے شمار حکمتیں موجود ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت۔ مثلا سرکار نے فرمایا جب کوئی کپڑا پہنو، ہم کرتے نا کرتا اتار کے لٹکا دیا، جیکٹ لٹکا دی، اپنی صدری لٹکا دی، ہوتا ہے نا، اور جب گئے پہن کے چلے گئے۔ فرمایا جب کپڑا اٹھاؤ، یعنی لٹکا ہوا ہے نا آپ نے اٹھایا، اس کو 3 مرتبہ جھٹک دو، اس کے بعد پہن کر چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی سنت، طریقہ اور سرکار کا حکم۔ اب اس پر ایک بڑی دلچسپ بات، ایک صاحب نے کہا یہ کیا بات ہوئی، 3 مرتبہ جھٹک تو وہی پہن کے چلے جاؤ، کوئی اس پہ خاک لگی ہوئی ہے کیا؟ کوئی بات نہیں ہے، پہن کے چلے جاؤ، 3 مرتبہ اٹھاؤ اس کو، جھٹکو، پھر پہنو۔ اعتراض کیا حضور کی سنت پر۔ اب اعتراض کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ دلچسپ بات ہوئی، بلکہ لطیفہ ہی ہو گیا پورا۔ کرتا اتار کر لٹکایا، اس میں ایک چوہیا کا بچہ گھس گیا، اور سرکار کی حکمت یہی تھی کہ جانور ہوتے ہیں نا، حشرات الارض ہیں، رینگنے والے جانور، کچھ بھی گھس سکتے ہیں اس کے اندر، تو اگر آپ ایسے ہی پہن لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور اندر رہ جائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ اس کو جھٹک دے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے نا، اگر خاک ہے تو وہ بھی جھٹ جائے گی، اور اگر ویسے کوئی چیز ہے تو نکل جائے گی، دو پہلی مرتبہ بھی نکل جائے گی، دوسری مرتبہ ورنہ تیسری میں تو ضروری نکل جائے گی۔ اس لیے فرمایا 3 مرتبہ اس کو جھٹک دو اور پھر اس کے بعد پہن کے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے اعتراض کیا، ایک چھوٹا سا چوہے کا بچہ گھس گیا۔ اب انہوں نے کرتا پہنا کہ فوراً نماز میں شامل، اور یہ واقعہ میں ایسے نہیں بتا رہا، انہوں نے خود مجھے بتایا جن کے ساتھ ہوا۔ اب جب اور آئے بھی فجر کی نماز میں، اور اتفاق سے امام صاحب نے تلاوت بھی لمبی کر دی، اب وہ چوہے کا بچہ یہاں سے گھسا پیچھے نکل گیا۔ اب یہ یوں یوں کر رہے ہیں کہ کیا چیز جا رہی ہے، اب نماز میں یہ بھی نہیں کہ کرتا اتار کے جھاڑ دیں، وہ ادھر سے ادھر چلا جائے، ادھر سے پھر ادھر چلا، عجیب لطیفہ ہوتا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے سلام پھرے تو امام صاحب بھی خوشی خضوع میں پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ فجر کی نماز ایک کیفیت کا عالم ہے، وہاں خوشی خضوع ہے اور یہاں مصیبت آ رہی ہے۔ اب یہ ڈر بھی رہے ہیں کہ اس کے جو پنجے تھے وہ چپ بھی رہے ہیں، اب ڈر بھی رہے ہیں کہ یہ کاٹ نہ لے، ادھر سے یوں کر رہے ہیں، ادھر سے یوں کر رہے ہیں، پوری نماز ایسے ہی گزری، اور سلام پھیرتے ہی گھر بھاگے، گھر بھی قریب تھا، جاتے ہی کرتا اتار کے پھینکا تو چوہیا کا بچہ نکل کے بھاگ۔ کہہ رہے مجھے یاد آیا واقعی سرکار کی شان بلند، اور میرے منہ سے نکلا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا تھا، اگر میں آپ کی سنت پر عمل کر لیتا تو آج یہ مصیبت نہ ہو۔ یہ تو شکر ہے میں بچ گیا، اس نے کاٹ نہیں لیا۔ تو حضور کے تو ہر عمل میں حکمت، ہماری ناقص عقلوں میں نہیں آئے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب سرکار نے فرما دیا تو کرنا ہے، ہماری ناقص عقل میں نہیں آ سکتا نا، کیوں جھٹک دیں کپڑے کو، فرمایا نہیں 3 مرتبہ جھٹک دو پہن کے چلے جاؤ، حکمت تھی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا کہ دیکھو میرے نبی کی سنت پر اعتراض کرو گے تو یہ ہوگا، ابھی تو خالی ادھر سے ادھر ہی بھاگی تھی، اگر وہ کاٹ لیتی نا تو پتہ چل جاتا۔ تو میرے خیال سے اس کے بعد تو کبھی وہ یہ سنت نہیں چھوڑے گا، آپ تو نہیں چھوڑیں گے لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں جس نے کیا تھا۔ خیر بہرحال، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، یعنی معمولی چیزیں بھی ہیں، سونے کی سنت ہے، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، کھانے کی، پینے کی، ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہم سے عمل ہو سکے ہم اس پر عمل کریں۔ فرائض تو وہ ہیں کہ اگر وہ چھٹ جائیں تو وہ عمل ہی نہیں ہوتا، مثلا وضو کا فرض چھٹ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا، سنت چھٹ جائے تو وضو ہو جائے گا لیکن فرض چھٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن سنت اس لیے ضروری ہے کہ سنت نے عبادت کو نکھارا ہے، سنوارا ہے، اور یہی سنتیں تمام عبادات کی زینت ہیں۔ اگر سنتوں کو نکال دیا جائے تو عبادت کی زینت ہی ختم ہو جائے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو، ہم ان کو دیکھتے رہے پڑھتے رہے، तो हम जो नमाज पढ़ते हैं ये नमाज है? नमाज नहीं है, तो नमाज की नकल है। असल तो वो पढ़ गए, असल तो वो थी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, असल तो वो थी जो सहाबा ने पढ़ी, असल वो थी सिद्दीक उमर उस्मान और अली ने पढ़ी, असल वो थी जो हुसैन ने मैदान करबला में पढ़ी। हम क्या नमाज पढ़े, हम क्या नमाज पढ़े? हमने तो इधर नियत बांधी, उधर ध्यान जो है वो बंदर रोड पर है, ध्यान जो है वो घर में है, ध्यान जो है वो तिनट्टी पर है, दुकान में है, मकान में है, बीवी में, बच्चों में, ये नमाज है? अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। हम तो नकल कर रहे हैं, जैसा उनको देखा सरकार ऐसे खड़े हुए तो हम भी खड़े हो गए, हुजूर ने रुकू किया हमने भी कर लिया, हुजूर ने मुबारक पेशानी को जमीन के साथ लगा दिया हमने सजदा कर लिया। लेकिन फिर सवाल है, कहेंगे फिर ये नकल है तो हम कर क्यों रहे? जब ये नमाज नहीं है, नकल है, तो क्यों पढ़ रहे? नहीं, नकल करते रहो, एक भी असल हो गई सारी कबूल, सारी कबूल है। और अल्लाह की शान ये है कि जो महबूब बंदों की नकल करता है वो नकल को भी कबूल कर लेता। अदाएं तो उन्हीं की है ना, अदाएं तो उन्हीं की है, ये हमारी अदा तो नहीं है। सरकार ने हाथ उठाए और यहां पर बांध लिए, हमने उनको देखा तो हमने बांध लिया। सरकार को सहाबा ने देखा, सहाबा को ताबईन ने देखा, ताबईन को तबे ताबईन ने देखा, उनको बुजुर्गाने दीन ने देखा, उनको औलिया कामिलीन ने देखा, उनको आइमा मुज्तहिदीन ने देखा। ये सब देखने वालों की लाइन चल रही है, देखने वाले एक दूसरे को देखते रहे और यहां तक सिलसिला पहुंच गया। तो हमने उनको नहीं देखा, लेकिन उनको देखा जिन्होंने उनको देखा, तो देखने वालों का सिलसिला चल रहा है, कयामत तक चलता रहेगा। पूछा नबी पाक अलैहिस्सलाम से, आपके इतने उम्मती हैं और कयामत तक बेशुमार उम्मती होंगे, बेशुमार होंगे ना, उनका कोई शुमार नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, और कयामत तक कितने हो जाएंगे? और एक हदीस में सरकार ने फरमाया, मैं तुम्हारी कसरत पर फखर करूंगा, तुम्हारी कसरत पर फखर करूंगा। सहाबा ने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, इतने हजारों लाखों करोड़ों खरबों बल्कि बेशुमार उम्मतियों में, बेशुमार लोगों में, जहां सारी उम्मतें जमा हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी मौजूद है ना, और उनकी उम्मत भी मौजूद है, और उनकी उम्मत भी ये नहीं कि 1000-2000, लाखों है, और सबको मिला लो तो कितने हो जाएंगे? यानी वो 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम या कम उबेश, इन सब की उम्मतों को जमा करो और इस उम्मत उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका शुमार करो। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारे लोगों में मजमे में आप अपने गुलामों को कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे हैं ना, कैसे पहचानेंगे? फरमाया, आज़ाए वुजू से, आज़ाए वुजू से पहचानूंगा। मेरे उम्मती नमाज के लिए जब वुजू करते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथों को धोते हैं, पैरों को धोते हैं, जिन जिन आज़ा को धोते हैं, कयामत के दिन उनके ये आज़ा चमक रहे होंगे, मैं उन चमकते हुए आज़ा को देखकर पहचान लूंगा मेरे गुलाम आ रहे हैं, मेरे उम्मती आ रहे हैं, मैं आज़ाए वुजू से पहचान लूंगा। गुर्रम मुहज्जलीन, कहां गुर्रम मुहज्जलीन का लफ्ज हदीस में इस्तेमाल हुआ? फरमाया, घोड़े होते हैं ना काले, और कुछ घोड़े ऐसे जिनके चेहरे सफेद, जिनके पांव सफेद, तो बताओ उस घोड़े का मालिक अपने घोड़े को पहचानेगा नहीं पहचानेगा? सारे काले हैं और उसमें एक का चेहरा चमक रहा, पांव चमक रहे हैं, अलग पहचाना जाएगा ना? ऐसे ही मैं अपने गुलामों को भी पहचानूं, इनके चेहरे चमक रहे होंगे, इनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे। तो अगर ये चाहते हो कि कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे चमक जाएं, तुम्हारे हाथ और पैर चमक जाएं, इसी दुनिया में नमाज के लिए वुजू करते रहो, इंशाल्लाह कयामत में चमकते रहो और आका अपने गुलामों को देखकर पहचान लेंगे। ये है वुजू की फजीलत, वुजू करने से चेहरे चमक जाएंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत इबादत को निखारती है, संवारती है, इबादत की जीनत है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो इबादत ही नामुकम्मल, और जो सुन्नत पर अमल करता है उसकी इबादत, उसका अमल बदरजे औला कामिल हो जाता, अकमल हो जाता है, और फिर उसमें किसी कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती। और अल्लाह तबारक वताला उस सुन्नत की बरकत से उस बंदे का वो अमल भी कबूल कर लेता। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो अजर मिलेंगे, एक सुन्नत पर अमल करने का अजर मिलेगा और एक सुन्नत में जो हिकमतें हैं उसका अजर और सवाब मिलेगा, उसके फवाइद मिलेंगे जो हमारी अकल में भी नहीं है कि सरकार ने क्यों फरमाया। ये शान है हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और मुकद्दस सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, ए अल्लाह इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमा। ए अल्लाह आलमीन ये तमाम हजरात और ख़वातीन जो दूर दराज मकाम से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमा, इनके रोजगार में तरक्की अता फरमा, इन सब की जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।